اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے قلندر شعور، آج ہم اس کے صفحہ نمبر 144 سے اس کے مطالعے کا آغاز کریں گے. یعنی ماشاءاللہ آپ نے ایک گرس یعنی 12 درجن صفحات اس کتاب کے مطالعہ فرمائے. اس ٹاپک کا عنوان ہے زندگی میں سانس کا عمل دخل. گزشتہ چیپٹر میں حضور مرشد کریم نے بتایا کہ سانس کے دو رخ ہیں، ایک سعودی رخ ہے اور ایک نزولی رخ ہے، اور یہ فرمایا کہ کس طرح سے اگر ہم سانس کے سعودی رخ سے ہم ربط ہو جائیں، ہم رشتہ رہیں، یعنی اس کی طرف توجہ دیں، اس پہ دھیان دیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی روح سعود کرے گی، اور سعود کرنے کے لیے اوپر کو اٹھے گی اور اپنے اصل یعنی اپنے خالق اپنے مالک کے ذہن کو سمجھنا سیکھ لے گی. پھر اس سے بتایا کہ یہ ساری کائناتی توانائی جو ہے یہ لہروں پہ چل رہی ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے خیالات پہ قائم ہے، اور ان خیالات پہ کنٹرول کے لیے آپ کے اندر آپ کے ذہن میں آکسیجن کی مقداریں کس قدر وافر مقدار میں ہونی چاہیے. تو اسی کی کنٹینیویشن میں حضور مرشد کریم نے بات فرمائی ہے کہ زندگی میں سانس کا عمل دخل کیا ہے. یہ زندگی کیا ہے پہلے تو یہ طے کریں، زندگی کسے کہتے ہیں، اور زندگی میں پھر سانس کا عمل دخل کیا ہے. زندگی کی ڈیفینیشن اگر ہم کریں تو ڈیفائن کرنے کو یہ کہیں گے کہ زندگی وہ طاقت ہے جو مادی سطح پہ آپ کے اندر سانس کو کھینچ رہی ہے، سیمیلیٹ کر رہی ہے، امبائب کر رہی ہے. یہ شور آ رہا ہے، ذرا اس کو روکیں. تو زندگی میں سانس کا عمل دخل، زندگی کیا کر رہی ہے؟ چیزوں کو اپنے اندر ایسیمیلیٹ کرتی ہے، جمع کرتی ہے، کھینچ کے اپنے اندر اتار لیتی ہے اور پھر ڈسپلے کرتی ہے. مادی سطح پہ ہم سانس کو اندر کھینچتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی اندر جاتا ہے، غذا اندر جاتی ہے، اور وہ توانائی بن کر جسمانی، ذہنی اور روحانی افعال کو سر انجام دیتی ہے. تو زندگی وہ قوت ہے جو مادی زون میں، ذہنی سطح پہ اور روحانی سطح پہ. اب ذہنی سطح پہ اطلاعات وصول کرنا، اندر جذب کرنا، یہ ہے زندگی. اب زندگی جو ہے یہ روحانی سطح پہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر امبائب کر رہی ہے. یہ تین درجے ہیں زندگی کے، ہم تینوں درجوں سے آشنا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم ظاہر ہے کہ اگر زندگی کے بارے میں شعور نہیں رکھتے تو ہم زندہ کتنے ہوں گے، جتنا شعور رکھتے ہوں گے زندگی کا. تو زندگی کی بنیاد، مادی زندگی کی خاص طور پہ بنیاد جو ہے یہ ہے سانس پہ. تو زندگی میں سانس کا عمل دخل، اس پہ حضور مرشد کریم کیا فرماتے ہیں؟ پہلا جملہ نوٹ کریں ذرا، ماورائی علوم سیکھنے کے لیے مضبوط اعصاب اور طاقتور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نقطہ سمجھ لیں، اگر آپ کا رجحان ماورائی علوم سیکھنے کی طرف ہے تو آپ کو دو چیزیں زادہ راہ کے طور پہ چاہیے. ایک مضبوط اعصاب، انگریزی میں کہیں گے کہ اسٹرانگ نروس، یعنی آپ کا نروس سسٹم بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور طاقتور دماغ. طاقتور دماغ یعنی شعوری طور پہ آپ کا دماغ بہت مستحکم ہونا ضروری ہے. ماورائی علوم سیکھنے کے لیے مضبوط اعصاب اور طاقتور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. اعصاب میں لچک پیدا کرنے، دماغ کو متحرک رکھنے اور قوت کار कुव्वत कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए सांस की मशकें बेहद मुफीद और कारामद है। यानी ये दो टारगेट हैं, मजबूत आसाब और ताकतवर दिमाग, और उसके लिए हमें सांस की मशकें, इनको ऑप्ट करना पड़ेगा, इनको इख्तियार करना पड़ेगा, इनकी पाबंदी करनी पड़ेगी, इनकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। अब हमने अजीब एक इसमें मुगालता जो है कि वो हम 10-15 मिनट सांस की मशक करके समझते हैं कि हमें फायदा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आप सांस की मशक के अलावा भी सारा दिन तवज्जो दें बार बार अपने सांस पे और सांस को गहराई में खींच के अंदर लें, आराम आराम से, नरमी से, तहम्मुल से, जितना सांस को आप आहिस्ता आहिस्ता अपने फेफड़ों में भरेंगे, फेफड़े पूरे भर भर के सांस लेना सीख लेंगे, तो ये मशकें आपको दुगना नहीं चौगना फायदा देंगी। कलंदर शौर का मुसाफर जब सांस की मशकों पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, यानी गोया कलंदर शौर के मुसाफर को सांस पे कंट्रोल बहुत जरूरी है हासिल करना, चाहे वो मशकों के जरिए करे, चाहे सारा दिन इसकी प्रैक्टिस करके करे। इससे होता क्या है, तो दिमाग के अंदर रेशों यानी टिश्यूज और खलियों यानी सेल्स की हरकत और अमल में इजाफा हो जाता है। गौर करें, सांस की मशकों पे पहले तो कंट्रोल हासिल करेंगे, जब ये कंट्रोल हासिल होगा तो दिमाग के अंदर जो रेशे हैं, जो टिश्यूज हैं और खलिये हैं, उनकी हरकत और अमल में इजाफा हो जाएगा। वो जो पहला जुमला है कि मजबूत आसाब और ताकतवर दिमाग, तो उसका तरीका बता दिया। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना सांस पूरा लेना सीख लें तो ये सारा निजाम आपका दुरुस्त होता चला जाएगा। इनर में सांस रोकने से, यानी जब आप सांस अंदर ले लेते हैं, अगर आहिस्ता आहिस्ता ले फिर उसे रोक लें, तो रोकने से क्या होता है, दिमाग के खलिये चार्ज हो जाते हैं, जो इंसान की खुफ्ता सलाहियतों को बेदार होने, उभरने और फलने फूलने के बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। दोबारा इस पे तवज्जो दीजिए, देख लीजिए कि सांस पे कितने सफ़े उन्होंने तहरीर फरमा दिए, ताकि हमारा ध्यान इस तरफ जाए कि ये कितना ज़रूरी है। हजूर फरमाते हैं कि माहिरीन रूहानियत ने सांस की मशकों के कायदे और तरीके बताए हैं, अगर उन तरीकों पर अमल किया जाए तो बहुत सारे रूहानी और जिस्मानी फवायद हासिल होते हैं। अब वो जो तरीके माहिरीन ने बताए हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उन सारे तरीकों का लुबे लुबाब और खलासा अर्ज कर दिया कि मुर्शिद करीम के इरशादात की रोशनी में सांस को आहिस्ता 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 अंदर खींचते जाएं, जब पूरा फेफड़े भर जाएं तो उसे रोकें। दोनों बातों के फवायद बता दिए कि आसाब मजबूत होते हैं, उनमें लचक पैदा होती है, जहन मजबूत होता है, खलिये दिमाग मुतहरक होता है और खलिये चार्ज होते हैं। फरमाते हैं कि ये बात वाजे हो चुकी है कि जिंदगी का दारोमदार सांस के ऊपर है। इंसानी जिंदगी में वाहमा ख्याल तसव्वुर इदराक एहसास सब उस वक्त तक मौजूद है जब तक सांस का सिलसिला जारी है। यानी इंसानी जिंदगी बेस करती है ये वहम या वाहमा या ख्याल तसव्वुर इदराक और एहसास इन पांच चीजों पे, ठीक है, और ये जब उस वक्त तक मौजूद है जब तक सांस चल रहा है। जो सांस चलना बंद हो जाए तो व्हाट वी आर डेड बॉडी। तो जब तक सांस का सिलसिला जारी है, सांस के जरिए ही आदमी के अंदर सेहत बख्श लहरें मुंतकिल होती हैं। ये जुमला जिसकी समझ में आ जाए उसको डॉक्टरों से निजात मिल गई। जो बंदा ये बात समझ लेता है, राज समझ लेता है, वो सांस के जरिए अपने हर मर्ज का इलाज कर सकता है। आदमी के अंदर सेहत बख्श लहरें मुंतकिल होती हैं और सांस के जरिए आदमी फिजा में फैली हुई कसाफत, धुआं और गर्दो गुबार से बीमार हो जाता है। साफ और खुली फिजा में बैठकर सांस अंदर लेते वक्त ये तसव्वुर किया जाए कि फिजा में से सेहत और तवानाई की लहरें मेरे अंदर जा रही हैं और जिस्म में जज्ब हो रही हैं, तो वाक्यतन ऐसा ही हो जाता है। सांस की मखसूस मशकें, यानी कि सांस की ये जो मखसूस मशकें हैं, बेसिकली इनकी तीन किस्में हैं। एक ये है कि आप सांस को आहिस्ता आहिस्ता लें, रोकें और आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें, इसे स्लो ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरी ये कि आप सांस को तेज तेज लें, इस तरह करके झटके से सिर्फ बाहर एक्सहेल करते जाएं, वो इनहेल खुद होगा, उसमें रोकने का नहीं। एक है स्लो ब्रीदिंग, एक है फास्ट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की तीसरी किस्म है अल्टरनेट ब्रीदिंग, यानी एक नथने से सांस लेके आहिस्ता आहिस्ता उसे रोकें, फिर दोनों उस नथने को दोनों नथने बंद करके इसे रोकें, फिर दूसरा नथना खोल के उसके रास्ते निकाल दें। इसे अंगूठे और उंगलियों से बंद किया जाता है। अंगूठा हटा के दूसरे नथने से निकाल दें, फिर वापस अंगूठा जिस नथने से हटाया हुआ उस दूसरे नथने से सांस लेके उसे अंदर रोकें, फिर उंगलियां हटा के पहले नथने से इसे खारिज कर दें, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये चूंकि हमें लगता है कि सब्र आजमा काम है, तो हम होता नहीं है, तो शऊर मुजाहमत करता है। अगर ये तीन मशकें हैं, इनमें से जो भी आप अपना लेंगे, ये स्लो ब्रीदिंग जो है ये सारों का माई बाप है। ये जो फास्ट ब्रीदिंग है, इससे जिस्मानी तवानाई में बहुत इजाफा होता है, फेफड़ों में बहुत ताकत पैदा होती है। ये जो अल्टरनेट ब्रीदिंग है, इससे आपकी मावराई सलाहियतें और टेलीपैथी की सलाहियतें ज्यादा बढ़ती हैं। अब ये मखसूस मशकें क्या करती हैं, दौरान खून को तेज करती हैं, दिमागी सलाहियतों को उजागर करती हैं और बरंगेख्ता जज्बात को ठंडा करती हैं। बरंगेख्ता भड़के हुए जज्बात, यानी गुस्सा हो गया या जो भी जज्बात हैं हमारे किसी भी किस्म के, वो अगर उभरे हुए हों, भड़के हुए हों, तो उनको ठंडा करती हैं। और किसी बहुत ही मुसफ़ा खून, मुसफ़ी खून दवा की तरह, यानी खून को साफ करने वाले दवा की तरह खून को साफ करती हैं। यानी ये जो जितनी हम खून की बीमारियां हैं, उसका ये एक नेचुरल कुदरती साफी है, ये सफाई कर देती है। सांस की मशकों से आदमी तकरीबन अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकता है। आप इसकी अहमियत देखें, साफ बता दिया। मसलन निसियां का मर्ज, ये भूल जाना, पेट के जुमला इमराज, मेदे और आंतों में अल्सर, कब्ज, संगे रहनी, नजला, ये संगे रहनी ये पथरी वथरी जो हो जाती है, नजला, जुकाम, सरदर्द, मिर्गी और दूसरे किस्म के दिमागी दौरे, बिनाई की कमजोरी वगैरह वगैरह। यानी गौर करें, क्या कहा कि सांस की मशकों से आदमी तकरीबन अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकता है, यानी कि ये आपका पूरा जिस्मानी निजाम दुरुस्त कर देता है। सांस की मशकों को इलाज के कायदों के मुताबिक, जो फिर इलाज है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ तरीकों से सांस लेने की बातें तजवीज की जाती हैं, अगर उनको प्रैक्टिस किया जाए, पाबंदी वक्त के साथ अंजाम दिया जाए, तो सीना, गले, नाक वगैरह के मराज भी अज खुद खत्म हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि 60-70 साल के बूढ़े लोग जिन्होंने सांस की किसी मुंतखब मश को अपना मामूल बना लिया है, हशाश बशाश और नौजवानों की तरह तरोताजा रहते हैं, आखिरी वक्त तक उनकी खाल झुरियों से महफूज रहती है। देखिए जरा ये रिंकल फ्री स्किन का सबसे मौसर तरीका बता दिया कि ये जो जिल्द में झुरियां पड़ जाती हैं, ये सब ऑक्सीजन की कमी का, जब खून का दौरानिया प्रॉपर तरीके से गर्दिश करेगा तो जाहिर है खाल में झुरियां क्यों पड़ेंगी। फिर देखे इससे मिजाज पे कितना पुशमुर्दगी और अफसुर्दगी उनके करीब नहीं फटकती। जो हजरात उस्ताज की निगरानी में सांस की मश्क पाबंदी वक्त के साथ करते हैं, उनके अंदर इंतकाल ख्याल टेलीपैथी की ऐसी कुव्वत पैदा हो जाती है कि वो दूर दराज फासलों पर अपने अहकामात पहुंचा देते हैं। मेरा अपना एक जाती वाकया सुनिए। ये हजूर मुर्शिदे करीम फरमा रहे हैं कि मेरा एक अपना एक जाती वाकया सुनिए। कलंदर शौर के बानी कलंदर बाबौलिया की निगरानी में सांस की मश्क के दौरान एक रोज मुझे ये ख्याल आया कि जब जिंदगी का दारोमदार सांस के ऊपर है और जमीन पर मौजूद हर चीज रोशनियों के ताने बाने यानी ऑरा में बंद है, तो फिर क्या जरूरत है कि आदमी आटा गूंदे रोटी पकाए और खाना खाने का तकल्लफ करे। ये ख्याल हर रोज सूरज तलू होने के वक्त गहरा होता चला गया, यानी ये सुबह सूरज के तलू होने से पेशतर ये एक्सरसाइज किया करते थे। तो ये सूरज के तलू होने से पेशतर के वक्त ये ख्याल गहरा होना शुरू हो गया। तो फिर क्या हुआ कि एक रोज जब मैं सूरज तलू होने से पहले मशरक की तरफ मुर किए सांस की मश्क कर रहा था तो दिमाग में एक दरीचा खुला। उस दरीचे में ये ख्याल वारिद हुआ कि फिजा में से वो रोशनियां और वो अनासर जिनसे चने तखलीक होते हैं मेरे अंदर दाखिल हो रहे हैं, यानी वो रोशनियां और वो अनासर मेरे अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैंने जिसमें मिसाली की आंख से ये देखा कि मेरे सामने बहुत उम्दा किस्म के चने रखे हुए और मेरा जिसमें मिसाली उन चनों को खा रहा है। दूसरे दिन मेरे अंदर सेब खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, फिर दिमाग में दरीचा खुला और फिजा में फैली हुई वो रोशनियां जो सेब तश्कील करती हैं एक जगह मुजतमा होकर सेब बन गईं, रोशनियां मुजतमा हुई और सेब बन गईं और मैंने सेब खा लिए। देखें अब यहां क्या लिखा है, जिसमें मिसाली नहीं लिखा, लफ्ज मैं लिखा है, मैंने सेब खा लिए। अलकिस्सा मुख्तसर खुर्दो नोश का ये सिलसिला मतवातर 17 रोज तक कायम रहा। उन 17 दिनों में खाने पीने की किसी चीज की तरफ मेरा जहन मतवज्जो नहीं हुआ। जिस चीज को मेरा दिल चाहता था या जिस्मानी एतबार से मेरे अंदर एनर्जी वगैरह जखीरा करने का तकाजा पैदा होता था, मैं सांस के जरिए उस एनर्जी को अपने अंदर मुंतकिल कर लेता था। देखें यह है जिंदगी। फिजाए बसीत में फैली हुई इन रोशनियों के खाने पीने के इस अमल से, फजाए बसीत बसीत बस्त से फैली हुई इस फिजा में फैली हुई इन रोशनियों के खाने पीने के अमल से मेरे अंदर कलंदर शऊर की आंख इस कदर ताकतवर हो गई थी कि पत्थर और ईंट की दीवारें बारीक कागज की तरह नजर आती थीं, दूर परे की आवाजें सुनाई देती थीं। जो शख्स सामने आता था उसकी सोच और उसके ख्यालात मेरे जहन की स्क्रीन पर मुंतकिल हो जाते थे उस जमाने में बड़े ही अजीब तजुर्बात हुए, जो शख्स सूरत से परहेजगार था उसके ख्यालात की कसाफत से दिमाग मुताफन हो जाता था, और जो शख्स शक्ल सूरत के एतबार से जाहिद और मुत्तकी नहीं था, उसके ख्यालात की रौ सुबक हल्की और मुअत्तर महसूस होती थी। अजायबात की एक दुनिया रोशन हो गई थी। ये हजूर कलंदर बाब औलिया ने मुर्शिद करीम को 17 दिन का रोजा रखवाया था। 17 दिन लगातार रोजा रखना था, इतना लंबा रोजा। उसमें सिर्फ उनको चाय या पानी पीने की अफ्तार के वक्त इजाजत होती थी, और ये बाकी सारी ये मशकें करते थे। और देखिए कि वो अपनी रुदाद उन्होंने उस वक्त की, या वो जो मुशाहिदात हुए उनमें से कुछ आपको तालीम करने के लिए शेयर कर दिए कि जब आदमी अपने इनर सेल्फ से आशना होता है तो सांस की मशकें किस तरह से गौर करें। चने बन रहे हैं, सेब बन रहे हैं, जो जी चाह रहा है वो बना रहे हैं और खा रहे हैं। गौर करें रोशनियों के जोर पे, और वो एक निजाम है। बता दिया कि अजायबात की एक दुनिया रोशन हो गई। इसमें हजूर मुर्शिद करीम ने बहुत वजाहत से ये इसके फवायद बता दिए। अगला है कि रोशनियों के गोदाम। जिस तरह सांस की मशकों के जरिए शऊर या जिस्मानी निजाम ताकतवर होता है, उसी तरह सऊदी सांस के जरिए, ये जो हम अंदर सांस लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसकी बात हो रही है, इसी तरह सऊदी सांस के जरिए इंसान की रूह में अनवार के ऐसे जखीरे जमा हो जाते हैं जिन जखीरों से आदमी फिक्शन और मफरूजा हवास से निकलकर हकीकी दुनिया, जिसे उन्होंने गैब की दुनिया में पहुंच जाता है। अब ये क्या है, अनवार के जखीरे यानी ख्यालात के जखीरे जमा होना शुरू हो जाते हैं। जो ख्यालात अल्लाह की तरफ से आते हैं वो खालिस होते हैं, उनको अनवार कहा जाता है। इंसान की रूह में अनवार के ऐसे जखीरे जमा हो जाते हैं जिन जखीरों से, यानी फिर आप ऐसे ख्यालात में खो जाते हैं जिनकी वजह से आदमी फिक्शन यानी मफरूजा, फिक्शन कहते हैं जो गैर हकीकी हो, ये हम जिन हवास में हैं ये सब गैर हकीकी हैं और मफरूजा हैं, इनसे हम निकलकर हकीकी दुनिया यानी गैब की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सांस की मश्क से इंसान के अंदर जखीरा करने वाले मौजूद 6 स्टोर, जिनको आप 6 लताइफ कहते हैं, वो नूर रोशनी और एनर्जी से मामूर हो जाते हैं। गौर करें, सांस की मश्क से इंसान के अंदर जखीरा करने वाले मौजूद 6 स्टोर, नूर रोशनी और एनर्जी, 3 दायरे हैं ना, रूहे हैवानी, रूहे इंसानी, रूहे आजम। रूहे हैवानी के 2 दर्जे, रूहे इंसानी के 2 दर्जे, रूहे आजम के 2 दर्जे, ये 6 हो गए। ये 6 के 6, देखे रूहे हैवानी की सतह पे आपको एनर्जी चाहिए, रोशनी आपको रूहे इंसानी की सतह पे चाहिए, नूर आपको रूहे आजम के दर्जे पे चाहिए, और ये 6 के 6 स्टोर सांस की मश्क के जरिए भर जाते हैं। किससे? नूर से, यानी रूहे आजम नूर से भर जाती है, रूहे इंसानी रोशनी से भर जाती है, रूहे हैवानी एनर्जी से भर जाती है। रूह के अंदर ये 6 स्टोर मुख्तलिफ मुकामात पर हैं, और इन गोदामों में जो रोशनियां जमा होती हैं उनके रंग मुख्तलिफ हैं। पहले गोदाम में यानी लतीफा नफसी में जर्द रंग की रोशनियां, दूसरे में सुर्ख रंग, तीसरे में सफेद रंग, चौथे में सब्ज रंग, पांचवें में नीला रंग, छठे में बनफशी रंग की रोशनियां जमा हैं। अब इन रंगों के मिलाप यानी कॉम्बिनेशन से फिर आगे बहुत सारे रंग बनते हैं, और ये रंग दरअसल जिंदगी में काम आने वाले जज्बात के आईनादार हैं। अंदाजा कर लीजिए, ये सारा निजाम लहरों पे कायम है और उनकी अकसाम गिनवा दी बता दी। मेरा ख्याल है यहां रुक जाते हैं, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो मैं हाजिर हूं। जी जनाब, जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो कंडीशन जो बताई कि 17 दिन का जो रोजा जो रखाया गया अब्बा जी को, और दूसरे नंबर पे उनको जो एक रोशनियों की बनी हुई चीजें अपनी शोर के लेवल में जो उनके आती है वो उस हिसाब से उसको यूज कर लेते हैं, तो ये कंडीशन ये मुस्तकिल तौर पे नहीं रहती इंसान के ऊपर?
देखें, आपने जिस्मानी निजाम भी चलाना है ना।
सही
वो तो देखे ना, तरबियत है ना, वो तरबियत के लिए चंद दिन के लिए एक प्रैक्टिस कराई गई, लेकिन साथ में जिस्मानी निजाम भी तो चलाना है ना। देखे ना, तीनों दर्जों पे हमने चलना है, ये अधूरी एक साइडेड वन साइडेड गेम नहीं है। आप एक दर्जे को पकड़े, हम क्या गलती किए हुए, हम जिस्म पे तवज्जो दिए हुए, जहन और रूह को इग्नोर किया हुआ हमने, ठीक है ना। तो यही वो समझा रहे हैं कि भी तीनों दर्जों पे खेलने, जिस्म की जरूरतों को भी पूरा करना है, उसका उन्होंने तरीका बता दिया जिसकी वजह से हम तीनों दर्जों पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये सांस लेना जो है, सांस लेने से, सही तरीके से सांस लेने से, देखे ना, अब हम गलत तरीके से सांस लेते हैं, नतीजा क्या निकलता है, हम बीमार हो जाते हैं, हम अधूरा उथला सतही सांस लेते हैं, नतीजा उथले और सतही सोचें रखते हैं। हमारी सोचें भी उथली, हमारे सांस भी उथले, तो जज्बात में भी फिर गहराई नहीं है, सोचों में फिक्र में कोई गहराई नहीं है। तो उन्होंने साफ तो बता दिया कि सांस का सारा ताल्लुक है। देखे ना, लगातार कितने चैप्टर, कितने टॉपिक्स इसी जुमले को वजाहत करने में उन्होंने सर्फ कर दिए। अब देखें, अगर हम कलंदर शऊर अपनाना चाहते हैं तो कलंदर शऊर की किताब का शुरू में उन्होंने सारा कुछ बताया, आजाद तर्ज फिक्र, किताबुल मुबीन से बात शुरू हुई थी, किताबुल मुबीन, फिर उसके बाद अलवाहे महफूज, उसके बाद हजीरे, फिर उसके बाद निजाम, निजाम हाय शमसी से लेकर हमारी जिंदगी में जारी सारे निजाम, फिर आपकी नौए, फिर इनफरादी सतह पे पूरा आपको सारा मैकेनिज्म बताते हुए बात कहाँ ला के जोड़ी। आपके जहन में सारे ही सवाल आते थे कि ये कैसे होगा, तो मैंने कहा कि हम आगे पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ लिया आज आपने, कि ये देखे ना, ताकतवर जहन और मजबूत आसाब चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, टारगेट क्या है, उसके लिए आपको सांस लेना है और उस तरह लेना है जिस तरह वो फरमा रहे हैं, सऊदी हरकत पे तवज्जो रखनी है। अब यही बात देखे ना, हम कहते हैं यही बात शुरू से अंबिया कराम बता रहे हैं, योगा में क्या बताया गया, सांस पे कंट्रोल, प्राणायाम उनका पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। अब आप कहें जी ये तो योगा की नकल कर रहे हैं, वो असल में हकायक बता रहे हैं आप, जिसकी पहले भी बुजुर्गों ने बताए हैं हकायक, हम उसको रिचुअलाइज कर देते हैं, वो ड्रामे करने बैठ गए कि यूं टांगे करके बैठो तो यूं करके बैठो तो यूं लो सांस, और वो उसी के मतलब उन्होंने दुकानें बना दी। भाई सीधी सी बात कही जा रही है कि भी सऊदी रुख से मुतालिक होना है, बस सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेना सीख ले, फायदे भी गिनवा दिए कि भाई उसका मैकेनिज्म पूरा वाजे कर दिया किस तरह, और फिर उसका दर्जा बता दिया कि कहां तक ही ग्रो कर सकता है, किस दर्जे तक आप जा सकते हैं। जितना आपको आसाब पे कंट्रोल होगा, जितना आपका जहन ताकतवर होगा, आप रोशनियों पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे, फिर आप चीजें तख्लीक करें, चाहे चने बनाएं, चाहे सेब बनाएं, चाहे माल्टे बनाएं, ठीक है ना?
सही।
अल्लाह खुश रखे जी, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने ये सादत मुझे दी, मुझे अता की कि मैं आपके साथ इस किताब को पढूं। बहुत आपका शुक्रिया सर।
ये सर आपकी हुस्न नजर, आप नाज़िर से काबिल समझते हैं, आपकी मोहब्बत है तो हम आपके साथ हैं ना।
मेहरबानी आपकी। और कोई सवाल है किसी के ज़हन में पूछने की बात? वैसे
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम।
भाईजान, ये जब हम सांस लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंट्रोल हो रहा है सांस
चले? जब होता है तब खुद ही पता चल जाता है। गौर करें, जब आप छोटे बच्चे थे तो आप निवाला खुद उठा के मुंह में नहीं डाल सकते थे, आप प्रैक्टिस करते रहे तो फिर क्या हुआ, आपके आजा में एक सिंक्रोनाइजेशन पैदा हो गई। अब आप प्लेट से निवाला उठाते हैं, उंगलियां उसे लपेटती हैं, सालन में डबोती हैं, उंगलियों को सालन नहीं लगता, आप उसे होंठों तक लाते हैं, होंठ खुद ब खुद खुल जाते हैं। जो ही होंठ उस निवाले को पकड़ते हैं, आपका हाथ हट जाता है, वो निवाला आप अंदर ले लेते हैं। हाँ या नहीं? तो अब ये कैसे पता चला आपको कि आपको कंट्रोल आ गया?
जी सर, वो खुद ब खुद हो गया।
हाँ, खुद ब खुद नहीं हो गया, उसके पीछे आपकी अम्मा की, आपके अब्बू की, आपकी अपनी मेहनत शामिल थी, हमें वो याद नहीं। इसी तरह जब आप एक बिगड़ी हुई आदत को सुधारेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, जब भी तवज्जो आ जाए आप आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर के लेना शुरू कर दें, रफ्ता रफ्ता खुद देखेंगे कि कंट्रोल बढ़ गया। ठीक हो गया?
अच्छा जी सर, ये ना कुछ वक्त के बाद, एक मिनट दो मिनट के बाद सांस फूलने लग जाती है।
जी हाँ, ये शऊर की कमजोरी है ना, जब आप इसको, जब सांस फूलने लगे तो आप वापस अपने रूटीन पे आ जाएं, उठला सांस लें, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाएं। हमने लगे रहना है, हम लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। आप ये तय कर लें कि भी मैंने तो करना है, तू फूलता है या सुकड़ता है तो तेरी मर्जी।
ठीक है सर, इंशाल्लाह
जी, अल्लाह हिम्मत दे। ठीक है डॉक्टर साहब,
ठीक है सर,
ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।